राम पहला चतुर्मास 2008 सिंथल राम धाम में सेठ जी के पेड़ पड़े हुए 1 से लेकर 43 तक। राम
राम
राम राम राम धेयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दैतयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तितः यं संपद्य जहत्यजा मनुषये सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं। भगवान को संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर आत्मकल्याणार्थी समस्त सज्जनों का भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन कर समय की पावनता की दृष्टि से नम्र निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भगवद् गीता जैसा आत्मकल्याण का यथार्थ उपदेश और यथानुभव उपदेश देने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। दार्शनिक ग्रंथों में गीता सर्वोत्तम है। गीता हमको व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। संसार का काम धंधा जिस ढंग से हम लोग अज्ञान अवस्था में करते हैं तो करने का बाह्य रूप तो वही रखना है, लेकिन भीतर का भाव बदलना ये गीता का खास महात्म्य है। अर्जुन क्रिया को बदल रहे थे। अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध करना पाप है, कई प्राणी मरेंगे और हमको राज्य चाहिए नहीं, भीख मांग के निर्वाह कर लेंगे, क्यों अपने सगे संबंधियों को मारे, क्यों अपने छोटे और बड़ों के सामने शस्त्र चलाएं, बड़े भी कैसे, भीष्म द्रोण प्रमुखतः हमारे वंश की दृष्टि से देखा जाए तो भीष्म पितामह है, और शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लिया। अब इनके सामने बाण चलाऊं और मिलेगा क्या? राज्य मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। फिर मैं क्यों युद्ध करूं? भगवान ने कहा बस ये तेरी समझ की गलती है। युद्ध का उद्देश्य राज्य की प्राप्ति तूने बनाई है, परंतु युद्ध जो कर्तव्य कर्म है उसका फल क्या होता है ये तुमको पता ही नहीं है। किसी भी कर्तव्य का फल सांसारिक रूप नहीं होता, कर्तव्य का फल परमात्मा होते हैं। कर्तव्य का ठीक पालन किया जाए तो मनुष्य का कल्याण होता है। कर्तव्य संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। अर्जुन, तू सोचता है कि कर्तव्य करने पर फल तो मिलेगा ही मिलेगा, फल ऐसे थोड़े ही मिलता है। अपने कर्तव्य में कुछ लगाव रखोगे तो वो फल मिलता है जिससे व्यक्ति संसार में बंधता है। तूने राज्य के उद्देश्य से युद्ध को समझा है, इसी कारण से आज तुमको युद्ध न करने की इच्छा हो रही है, और ये तुम्हारा मोह है, व्यामोह है। इस व्यामोह को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय कर्तव्य कर्म का है। यदि तुम नहीं करोगे तो जबरदस्ती तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि अनादि काल से जीव की संरचना उसके कर्तव्यों के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार होती है। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। तुमको परवश होकर के कर्म करना ही पड़ेगा। बोलता है कि मैं भीख मांग के निर्वाह कर लूंगा, मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा। अर्जुन, छोड़ के जाना कहना सुगम है, छोड़ के जा नहीं सकेगा, तेरी प्रकृति नहीं, तेरा स्वभाव नहीं। क्योंकि यदि तेरे छोड़ने का स्वभाव होता तो तुझे ब्राह्मण बनना होता या और कहीं होता, तू क्षात्र धर्म में नहीं आता। तो क्षात्र धर्म में है तो युद्ध तो तेरे प्रकृति में है, तू युद्ध का त्याग करने की बात कह दे तो क्या हुआ? तो युद्ध तो तू अनिवार्य रूप से करेगा ही, परंतु उसके करने का प्रकार है वो सुधार ले। तो उसमें भगवान ने ज्ञान योग की बात बताई, कर्मयोग की बात बताई, भक्ति योग की बात बताई। तो सबसे ज्यादा पसंद तो अर्जुन को भक्ति योग आया। गीता का ज्ञान योग और शास्त्रों के ज्ञान योग से बड़ा दिव्य है। ऐसे ही गीता का भक्ति योग और दूसरे दार्शनिक शास्त्रों के भक्ति योग से बड़ा सरल है, बड़ा सरस है, बड़ा प्रभावी है और बहुत जल्दी कल्याण करने वाला है। स्वयं भगवान ने कहा राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अर्हसि। सुसुखम कर्तुम सुसुखम, गीता की साधना में तीनों में ही सुखम सुगमता की बात बताई है। सुखेन ब्रह्म संस्पृष्टम, सुखेन ज्ञान योग में बताया, भक्ति योग में बताया कर्तुम सुसुखम। इसलिए गीता की साधना बड़ी सरल है। गीता ने परिवर्तन नहीं करवाया, गीता ने कर्म का परिमार्जन करवाया। यदि गीता जैसा ग्रंथ नहीं हुआ होता तो प्राय लोगों की एक ही धारणा होती कि घर गृहस्थ में रहते हुए कल्याण तो नहीं हो सकता। गीता के रहते हुए भी ये भावना है, प्राय लोगों की भावना है कि कल्याण तो साधुओं का होता है। महाराज जी ने कहा कि न तो भगवान कृष्ण साधु थे, भगवान जैसी गृहस्थी तो किसी की भी नहीं, 16,108 रानियां, 161,080 उनके बच्चे, 161,080 दस दस बच्चे थे, इतने तो उनके वो, यूं तो सारे जीव उनके बच्चे हैं, परंतु व्यवहार में भगवान के जितनी रानियां थी उससे 10 बच्चे हुए, एक एक बच्ची हुई, इतनी लंबी चौड़ी तो भगवान की गृहस्थी, और अर्जुन तो गृहस्थी था ही, तो कल्याण करने की बात साधुओं तक होती तो फिर ये कैसे बात होती। अर्जुन गीता के श्रोता है, कृष्ण भगवान वक्ता है, और दोनों ही गृहस्थी है, दोनों ने कल्याण की बात कही और सुनी है। इसलिए ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि गृहस्थ में कल्याण नहीं होता, बल्कि संत महात्माओं ने तो कहा कि गृहस्थ में कल्याण बहुत सुगमता से होता है। कैसे होता है कि गृहस्थ में हमारे पास में दो चीजें हैं, एक तो है मनुष्य और एक है हमारे पास पदार्थ। प्राणी और पदार्थ दो हैं, तो पदार्थों को अपने गृहस्थ के प्राणियों की सेवा में लगा दो, तो सेवा करने से गृहस्थ में मोह हटेगा, पदार्थों से भी मोह हटेगा और जिन प्राणियों की सेवा करते हैं उनसे मोह हटेगा। ये आपके हमारे सबके देखी हुई बात है कि जिसकी आप जितनी ज्यादा सेवा करोगे उससे आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। एक 25 वर्ष का जवान आदमी है, जवान लड़का आपका, उसके कोई बीमारी हो गई, भयंकर बीमारी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि साहब कोई इलाज नहीं है, अपने इष्ट देव का स्मरण करो और इसकी घर में सेवा करके लाभ ले, कोई इसका इलाज नहीं है, ये सफिशियंट मरेगा, निश्चित मरेगा, तो आप अपने घर ले जाओ। तो भाई एक बार तो झटका लगता है, पर उस व्यक्ति को वहां ले जाओ घर पर, फिर बाद में सेवा करो, और 5 वर्ष तक उसकी सेवा करी, और फिर उसके बाद वो मर गया, 30 वर्ष का हुआ तब। मर जाने के बाद आपको दुख नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि उससे मिलने वाले सुख की आपने आशा का त्याग कर दिया, और उसके प्रति जो राग था उस राग को आपने सेवा के बदले उसको समर्पित कर दिया, तो न तो उसमें राग रहा और न उससे और कोई आशा रही। अब वो मर गया तो दुख नहीं होगा, बल्कि आपको संतोष होगा कि बेचारा तकलीफ पा रहा था, इसे तो चला गया तो अच्छा रहा। और एक 60 वर्ष का घर का सदस्य है, खूब आपके साथ में बैठा है, हंसता है, खेलता है, कोई बात नहीं, अकस्मात सडनली वो मर गया, बड़ा दुख होता है साहब, एकदम ही चला गया। वो दुख इसलिए होता है कि उससे आपको सुख की उम्मीदें थी, उसमें आपका राग था, इस कारण से वो अंदर से दुख पैदा, वो राग है, वो दुख पैदा हो रहा है, राग ही दुख के रूप में हो रहा है। संतों ने कहा कि दुख की सृष्टि जीव बनाता है, भगवान तो प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान के यहां दुख नाम की चीज है ही नहीं, दुख भगवान नहीं बनाते, दुख है ये जीव अपनी तरफ से बनाता है। यदि ये संसार में सुख की आशा न रखे दुख नहीं होगा। परसों भाई अपने पारायण की पूर्णार्थी है, अभी तो अपने हजारों आदमियों का संयोग है, और उस दिन हजारों आदमियों के साथ आपका और हमारा सबका वियोग होगा, हजारों आदमियों से, और कितने अच्छे अच्छी माताएं बहनें भाई लोग यहां सत्संग करने वाले हैं, अच्छे सज्जन पुरुषों के दर्शनों का भी बड़ा लाभ होता है, फिर इतने दिन एक साथ रहे। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु, सब एक साथ हम रहे, सब हम एक साथ भोजन करें, ये भगवान से वेदों में मंत्रों से प्रार्थना की गई है। वो स्थिति अपने यहां है, लेकिन परसों जब बिछड़ेंगे किसी के भी आंख में आंसू नहीं है, आनंद के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी से किसी को कोई सांसारिक सुख की आसक्ति थी नहीं, आशा भी नहीं थी और आसक्ति भी नहीं थी। और घर में एक प्राणी का वियोग होता है तो रोते हैं, क्योंकि आसक्ति थी, राग था और आशा भी थी। तो ये बातें हमारे जीवन में प्रत्यक्ष घटती हैं। इसलिए संसार में हम लोग क्यों आए? आसक्ति का त्याग करने के लिए आए। संसार में हम अपना यहां सबसे बड़ा काम है सेवा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर ले। तीन बात है, या तो संसार से संबंध विच्छेद कर ले, या अपने आप को जान ले, या भगवान में प्रेम कर ले। तीन मार्ग में से जो मार्ग अच्छा लगे उस मार्ग से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इतनी बढ़िया बात शास्त्रों में आती है और गीता ने बताई है। उसमें जो कर्म योग है ये संसार से संबंध विच्छेद करता है, ज्ञान योग होता है वो स्वरूप का दर्शन कराता है, अपने स्वरूप का दर्शन, और भक्ति योग है वो भगवान में प्रेम कराता है। भगवान के दर्शन नहीं, भगवान में प्रेम। भगवान के दर्शन से कल्याण नहीं होता, भगवान के प्रेम से कल्याण होता है। दर्शन तो रावण ने भी किया था, वो दर्शन तो कंस ने भी किया था, दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया था, परंतु कल्याण नहीं हुआ। और कई पुण्यात्माओं, कई पापात्माओं ने पाप छोड़ करके भगवान में प्रेम किया और दर्शन किया, कल्याण हो गया। और कई पापात्माओं ने भगवान में प्रेम किया, दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन उनका नाम उनसे भी आगे रहा। भगवान का दर्शन करना और भगवान में प्रेम करना, उनमें प्रेम करना ऊंची बात है, क्योंकि हमारा काम प्रेम करने का ही है, दर्शन देने का काम भगवान का है। हमको भगवान की पंचायती नहीं करनी है, हमको हमारी पंचायती करनी है कि भाई हमारे अंदर भगवान में प्रेम है कि नहीं। देखो, हमको बनाया भगवान ने ऐसा है कि हम भगवान से प्रेम कर सकें। भगवान ने हम लोगों को, आप हम सबको प्रेम दिया, हमने वो प्रेम संसार में लगा दिया, वो आसक्ति के नाम से कहलाती है। वो आसक्ति हो गई हमारी संसार में, और वो आसक्ति जब भगवान में होती उसका नाम प्रेम होता है। तो ये आसक्ति कहां से आई संसार में करने की, कि भगवान के प्रेम को हमने उल्टा बना दिया। तो ये हमारी गलती है, भगवान की नहीं है। लोग कहते हैं भगवान की माया है, भगवान ही फंसाते हैं, भगवान ही निकालते हैं। इससे बढ़कर और कोई मूर्खता की बात नहीं होगी कि भगवान की माया है, उसमें भगवान फंसाते हैं इसलिए भगवान ही निकाल देंगे। अब जब भी निकाले निकाल देंगे, कभी नहीं निकलेंगे। वो क्या है, भगवान के भजन से छिपने के लिए ऐसी ऐसी ऊटपटांग बात बोलते हैं कि हमको भगवान का भजन न करना पड़े। भगवान की माया ऐसा भगवान फंसाते हैं। क्यों भाई? भगवान की माया है ये बात आप बोलते तो हो, लेकिन वास्तव में भगवान की माया मानते हो क्या? देखो हमसे कितनी गहरी चालाकी पूर्वक भूल हो रही है। हम लोग कितने चालाक और भूल में भी है और चालाकी भी करते हैं। क्या कि मेरा कुटुंब मेरा, मेरा मकान मेरा, मेरे रुपए पैसे मेरे, ये तो है मेरे, बाकी सारा संसार भगवान का है। हमारी चीज है जिसमें हमारी ममता है उसको हम भगवान की थोड़े ही मानते हैं, वो तो है हमारी, बाकी बाकी सब सब संसार भगवान का है, भगवान की माया है, भगवान ने बनाया सब भगवान की है। तो भाई वो सबको तुम भगवान की बोलते हो, अधिकार ही नहीं है। हम कहते हैं साहब ये गीता भवन के जितने मकान है ये हमने गीता भवन का यहां ट्रस्ट मंडल है उसको दान में दे दिया। कोई पूछे बाबा जी आपने एक ईंट भी यहां पर लगाई, एक कंकर भी आपका था क्या? हमने सब गीता भवन को दे दिया, सिर दे दिया, काय का दे दिया, आपका था ही नहीं साहब। अब हमने गीता भवन को सुपुर्द कर दिया। ऐसे हम लोग सारे संसार को तो मानते हैं भगवान का और अपनी अपनी जो चीजें उसमें मानते हैं हम अपना। अब एक एक व्यक्ति अपना मानता है संसार में, भगवान के पाती तो कुछ आया ही नहीं। हम हमारी अपना मानेंगे, आप अपनी कुछ मानेंगे, वो अपनी कुछ मानेंगे, वो भी अपनी मानेंगे। हमारी वस्तु को दूसरा व्यक्ति भगवान की मानेगा और हम हमारी वस्तु को छोड़ करके सबको भगवान का मानेंगे, कोई काम नहीं आएगा। ये भगवान की माया है, भगवान का जगत है, भगवान का ही शासन है, भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही मालिक है, अधिपति भगवान है, ऐसा कहते रहो लेकिन अपनी चीज अपनी मानेंगे कि ये हमारी है साहब, ये तो हमारी है। यह एक तरह से आत्मवंचना है, आत्मवंचना, अपने आप को ही ठगना। अपनी चीज को भगवान की मानो कि साहब हमारी, वास्तव में हमारी नहीं है। शरीर हमारा नहीं, कुटुंब हमारा नहीं, जिसको हमने हमारा माना वो हमारी नहीं, वो भगवान का है, निहाल हो जाएंगे। भागवत में एक प्रसंग आता है कि महाराज, हाँ पृथु कहो, महाराज पृथु के यहां सनकादि ऋषि आए, इतना अच्छा उपदेश दिया। चौथे स्कंद में कथा आती है भागवत के उपदेशों में, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं, संक्षेप में और बड़ी मधुरता के साथ जो उपदेश है वो सनकादिकों का उपदेश है, बहुत सुंदर उपदेश है। 10-15 श्लोक हैं वो, उन श्लोकों के ऊपर आप विचार करता आदमी तर हो जाए, इतना बढ़िया उपदेश दिया। तो राजा भी उस उपदेश से सुनकर के बहुत खुश हो गया। अब सनकादि ऋषि वहां से जाने वाले थे तो महाराज पृथु ने क्या किया कि महाराज ठहरिए ठहरिए, बोलिए, ये मैं, हमारा राज्य आपका, हमारे बच्चे आपके, हमारी स्त्री आपकी, हमारा गहना आपका, हमारा सारा परिवार आपका। उन्होंने मना नहीं किया, उनका तथास्तु, तथास्तु कहके वो अपने चले गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों क्यों कहा, क्या कहा कि माने इतने सब के ऊपर मेरा अपनापन था, वो हमने अपनापन आपको दे दिया। आप लोग जानते ही हो भाई, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं, आप महाराष्ट्र में रहते हो, इस महाराष्ट्र के शिरोमणि थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बड़े अच्छे संत प्रेमी भी थे और शिवाजी महाराज ने बचपन में महाभारत की कथा सुनी थी जिससे उनके अंदर कई बातों का जोश आया। शिवाजी को इस बात की तकलीफ हुई कि मेरा देश गुलाम क्यों है, पराधीन क्यों है। बचपन से लगन थी उनकी, तो छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक संगठन बनाया, संगठन बना करके और जितनी जितनी धरती पर वे कर सकते थे उस धरती को आजाद किया शिवाजी ने। वे शिवाजी जो जो बड़े होते गए उनका राज्य भी पराधीनता से मुक्त होता गया, करते करते शिवाजी सत्संग भी करते थे समर्थ रामदास जी महाराज के पास। तो एक बार शिवाजी को बड़ा, देखो सत्संग करेगा उसको वैराग्य होगा। अपने कई लोग बोलते हैं कितना ही सत्संग करो भाई हमारे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उसके ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। एक बात है बीच में याद आ गई, महाराज जी ने कहा कि आप लोग सत्संग करते हो उसमें ये धारणा मत बनाओ कि हम सत्संग करते हैं इतने वर्षों से हमें कोई फायदा नहीं हुआ और कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक है करते हैं घसीटा पीसीटा लगाते हैं, बाकी कोई फायदा कोई सुधार होने वाला नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको और विषय में आशावादी नहीं होना, कल्याण के विषय में आशावादी होना चाहिए। आत्म कल्याण में भगवत प्राप्ति में आशावादी होना ये साधना है। भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर हम क्या संकल्प कर रहे हैं, हमारा तो सुधार नहीं होगा, हमारा तो उद्धार नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर कल्प वृक्ष के नीचे जो आदमी जैसी बात बोलता है वही बात सिद्ध होती है। सत्संग करने वाले को नहीं, नहीं हमने सत्संग किया है भाई तो उद्धार उद्धार भगवान करेंगे भाई। अपना काम है सत्संग करते रहो, भगवान का भजन करते रहो और भगवान के ऊपर निर्भर रहो, वो उद्धार करेंगे तो हो जाएगा। देखो जो साधन भजन न करके बोलता है ना कि भगवान हमारा उद्धार करेंगे, वो कोई ठीक बात नहीं बोलता है। वो नींद में जैसे आदमी बोलता है वैसे बोलता है, जैसे कोई आदमी नींद में बोले वैसा वो बोलता है। नींद में 10 लाख रुपए लिया, नींद में बोलता है 50 लाख रुपए उसको दे दो और घर में खाने को ही नहीं है और नींद में बोलता है ऐसे ही भगवान की कृपा से कल्याण हो जाएगा। और भजन साधन करते नहीं, उनकी बात नहीं जो सत्संग करने वाले हैं। सेठ जी ने एक बात कही थी वट वृक्ष के नीचे, जिस दिन सत्संग समाप्त हो रहा था उस दिन, तो सेठ जी ने कहा कि देखो एक मेरी आपसे प्रार्थना है। तो लोग सब स्तब्ध हो गए कि सेठ जी क्या कहेंगे, कि मेरी विशेष प्रार्थना है आपसे कि आप लोग सत्संग करने वाले यथाशक्ति भजन साधन करने वाले आप अपने जीवन में ये कभी विचार मत लाना कि भाई हमारा कल्याण नहीं होगा, ये विचार मत लाना। क्योंकि इस विचार से जितना नुकसान होता है उतना नुकसान असाधन से नहीं होता है। जब सत्संग नहीं करते थे उस समय में जो हमारे पतन का मार्ग था वो मार्ग इतना गहरा और दुरूह नहीं था जितना बड़ा पतन सत्संग करते रहे और अपने कल्याण की आशा न रखें, इसमें ज्यादा पतन है। ये भावना कभी मत करना, ये कुछ नहीं होता जी, एक सत्संग ये करते रहे कुछ नहीं होता, ये बात भावना नहीं रखनी चाहिए। तो भाई शिवाजी को वैराग्य हो गया, शासन था सब था, लेकिन मन में आया कि एक दिन सब छूटेगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अब हीते, अंत में इनको छोड़ना पड़ेगा तो पहले से ही छोड़ दो। पीछे देखी बिगड़ता, पीछे जब बिगड़ने वाला ही है तो पहले दीजिए, पहले से उसका त्याग कर दो। ऐसा विचार करके और उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे त्याग कर दें, त्याग तो करना है पर भाई मेरा तो अब शासन करने का विचार नहीं है। ऐसा मन में विचार करके गुरुजी के पास गए, रामदास जी महाराज के पास। समर्थ रामदास जी बाबा ने कहा बोलो शिवा कैसे आए, कि महाराज क्या बताऊं मेरा तो शासन करने का विचार नहीं, शासन छोड़ने का विचार है। बड़ा अच्छा विचार है, बस महाराज आपके साथ रहूं भजन करूं, बिल्कुल अच्छा बहुत ही बढ़िया काम है। हम जंगल में हम जो है बस्ती में से ले आते हैं आटा लाते हैं और अपना टिक्कड़ बना लेते हैं और खाते हैं और मस्त रहते हैं। वो सीधा ही लाते थे आटा वगैरह, खूब बनी बनाई भिक्षा नहीं लेते थे समर्थ रामदास जी। आटा लेकर बाटी बनाते, बाटी में आराम से भोजन करते हो। तो समर्थ शिवाजी ने कहा कि बाबा जी आपकी बड़ी मौज है महाराज, कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं तो आपके साथ रहूं, राज्य को छोड़ना चाहता हूं। ठीक है, छोड़ दो। तो महाराज कैसे क्या करूं, कैसे छोड़ू, कैसा कर तू वापस अभी चला जा तेरे महल में, तेरे कर्मचारी, तेरे एहलकार, तेरे नौकर चाकर जो है तेरे राज्य के काम करने वाले, उन सब के बीच में लिखा पढ़ी कर दे कि ये राज्य मैं आज से छोड़ता हूं, मैं इस देश का अपने को राजा नहीं मानता हूं, यहां की संपत्ति से मेरा कोई मतलब नहीं है और मेरा राज्य से भी कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, ऐसा एक लेख पत्र तैयार कर लो, सुबह मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छी बात। शिवाजी ने रातों रात सबको बुला के सबने कहा कि महाराज कि भाई देखो मैंने गुरुजी को वचन दे दिया है, गुरुजी से आज्ञा ले ली है, ये तो काम मैं करके ही रहूंगा, आप हमको कितना ही रोध होकर के कह दो हम किसी की बात मानने वाले नहीं। सब कागज तैयार कर दिए शिवाजी ने, दस्तखत वगैरह कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज सुबह पधारे, पधारे बोल शिवा क्या विचार है कि महाराज सब लिखा पढ़ी कर दी, तो ला ऐसा कर हमारा खप्पर है इस खप्पर में भिक्षा दे दे, तेरा राज्य वो हमको दे दे। पैरों में पड़ गए महाराज, निहाल कर दिया, आप राजा हो जाओ फिर तो कहना ही क्या है, मैं राजा हूं, तेरा कागज है ना वो मेरे भिक्षा पात्र में रख दे, सब लोगों के सामने, प्रशासन के अधिकारी उन सब के सामने, सबके सामने शिवाजी ने रख दिया। बाबा जी ने वो कागज पढ़ लिया, कागज पढ़कर अपने झोली में डाल लिया कि आज से यहां का राजा मैं हूं, सारी संपत्ति मेरी है और सबका मालिक मैं हूं, लेकिन इसकी व्यवस्था शिवा तेरे को सुपुर्द करता हूं, तो सबकी व्यवस्था कर और साल में जितना घाटा मुनाफा है सबका चार्ट मेरे को दिया कर और ये सब मैं स्वीकार करता हूं। शिवाजी शासन करने लगे वापिस, बाबा जी ने वो ले जा करके अपने रख दिया कागज कहीं। अब बाबा जी कोई राजा लेना नहीं, कोई बात नहीं, राजा का जो एक अपनापन हो गया था राज्य में संतों ने ले लिया। शिवाजी आए कई दिनों के बाद कि क्यों शिवा मेरा शासन कैसा कर रहे हो, कि महाराज जी पहले तो मैं प्रमाद करता था, कभी कभी प्रमाद होता था, लेकिन अब तो महाराज सजग होकर के शासन कर रहा हूं, बिल्कुल सजग हो गया। क्यों, पहले तो महाराज मैं राजा था ना, इसलिए अहंकार से काम करता था तो कहीं कहीं त्रुटियां होती थी, लेकिन अब लगता है कि शासक तो गुरु महाराज है, मुझे तो गुरु महाराज की और प्रजा की सेवा करनी, मैं तो केवल एक सेवक मात्र हूं और तो कुछ नहीं हूं, तो एक तो मन के अंदर अभिमान नहीं है, एक सेवा का भाव प्रबल होता जाता है तो विश्राम करने की ज्यादा विश्राम तो उसी में मिल गया, सेवा की भावना होती है ना उसमें विश्राम मिल गया, पहले ज्यादा नींद आती थी अब नींद कम आती है, क्यों, कम नींद में भी पूर्ण विश्राम मिलता है। थकावट कब आती है, थकावट तो भाई शक्ति का ह्रास होता है तब आती है ना, तो मेरा मान करके काम करता शक्ति का ह्रास होता था, इंद्रियों में मन में बुद्धि में थकावट आती थी, अब कोई थकावट नहीं आती, कोई थकावट नहीं आती, बड़ा चित्त प्रसन्न रहता है और कोई काम बिगड़ता है तो हमारा चिंता नहीं होती है, और प्रजा में कोई अच्छा काम होता है तो कोई खुशी भी नहीं होती इतनी, ठीक है गुरु महाराज का है सब। कई दिन तक करने के बाद गुरु जी ने कहा कि देख शिवा मैं तो एक फक्कड़ अल्लड़ आदमी, अल्लड़ और फक्कड़ हूं, क्या मुझे राज्य से मतलब क्या है, तेरे अंदर जो ममता दसी हुई थी ना हमको तो ये ममता ही निकालनी थी, ये कागज ले जा, कल ने कोई दुरुपयोग करेगा फाड़ फूड़ के जला जलू की खत्म करो इसको, मुझे राज्य से लेना देना क्या है। ऐसे भाई अपने को घरों में रहना चाहिए, अपने ड्यूटी बजानी है, क्या लड़के हमारे कहना नहीं मानते तो हमको कहना मनवाना ही नहीं है, देखो जो घटना जैसी होती है ना उसके साथ समझौता करते चले जाओ, दिमाग से तनाव खत्म हो जाएगा। एक संत थे महाराष्ट्र में हुए, बड़े अच्छे संत थे, उनकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी, तुकाराम जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, नाम ले लिया, तो तुकाराम जी महाराज थे, कर्कशा स्त्री थी। तुकाराम जी महाराज ने देखा कि अब भगवान का भजन करना है मेरे को, तो स्त्री से झगड़ा करूंगी तो ऐसा झगड़ा करूंगा कि तू ऐसा कर तू वैसा कर, इससे कोई पार पड़ने वाली नहीं, इसका स्वभाव इसके पास, मैं कैसे सुधार सकता हूं, मुझे तो भगवान का भजन करना है, इसलिए मुझे तो समझौतावादी रास्ते से चलते, इसे समझौता ही रखना, जो करे उसको मैं आत्मसात करता जाऊं। बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी, कर्कशा थी, चाय जैसी बोलती थी। वो प्रसन्न होते कि बड़ा अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई फसावट की जगह होती है तो स्त्री होती है, इसी में ही आदमी सबसे ज्यादा फंसता है। और भगवान ने कैसा अच्छा मौका दिया, मुझे कितनी अच्छी स्त्री दी है कि ये लड़ाई झगड़ाई करती रहती है, इससे स्नेह प्रेम का कोई संभावना नहीं, क्योंकि वो प्रेम की वृत्ति इसमें नहीं गई, भगवान में और ज्यादा चली गई, बड़े मस्त हो गए वो। तो वो एक बार ये गन्ने का डंडा लेकर के आए, गन्ना लेकर के आए, ला करके दिया। अब घर में कुछ था नहीं, देखो संत होते हैं ना वो गरीब होते हैं, वो गरीब होते हैं बाहर से दुनिया को बताने के लिए कि भाई भगवान में प्रेम करो, बाहर से गरीब रहो। क्या क्या उनका भाव है भाई, क्या बताएं, कितना बताएं। तो वो गरीबी में बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो खाने को उस्ताने तो वो गुलसाठा ले आए, क्या अभी और तो कुछ खाने को नहीं मिला, आज ये मिला। तो उस स्त्री को क्रोध आया, उन्होंने एक दी उनके, ये लेके आए हो क्या करें इसका, एक मारी ना उनके, तो उससे वो दो टुकड़े हो गए। तो कर आप जिन का यह अच्छा हो गया है, एक तू ले ले टुकड़ा और एक मैं ले लेता हूं, समझौता कर लिया। अब क्या करे वो, उसके क्या करे वो, कुछ नहीं कर सके। ऐसे घरों में हम लोग समझौता करते हुए एक दूसरे के स्वभाव को पहचान कर समझौता करते हुए अपना समय निकालो भगवान की तरफ चलने में, कि भाई हम किसी को सुधारने का ठेका थोड़ी लिए, लड़कों को सुधार लेंगे कि बहुओं को सुधार लेंगे कि अपनी स्त्री को सुधार लेंगे, क्या करेंगे अपना, हमारा सुधार करने आए हैं। और हमारा सुधार इसी में ही है कि अपनी तरफ से किसी प्रकार से कोई खटपट न पैदा करें, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ न हो। कोई कह साहब न तो हम किसी को तकलीफ देना चाहते हैं और न हम किसी से तकलीफ भोगना भी चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वे आधे अंश में तो सही है कि हम तकलीफ देना नहीं चाहते, पर इस अंश में भूल करते हैं कि हम भाई किसी की तकलीफ सह भी नहीं सकते। कोई हमको भी तकलीफ न दे तब हमको अच्छा लगता है। तो भाई कोई आपको तकलीफ न दे ये आपके हाथ की बात थोड़ा ही है। सेठ जी ने कहा कि हमारे सारी गीता समझ में आ गई, 12वें अध्याय के एक श्लोक का एक चरण समझ में नहीं आया, क्या कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय है। तो लोकान्नो द्विजते चय तो समझ में आती है कि दूसरे लोगों को कोई उद्विग्न न करे, लेकिन दूसरे लोग उद्विग्न न हो ऐसा साधन हमारे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? अब हम किसी को उद्विग्न करते ही नहीं, अपने आप ही उद्विग्न हो जाए। कोई संत जा रहे हैं मस्ती से, अपने हाथ में कमंडल लिए हुए रे, हाथ में लठ लिए हुए रे, मस्ती जा रहे हैं। देखो मरुधर रो माल मुफत में खावे मोडा, ये मरुधर रो माल, मरुधर माने मारवाड़, मारवाड़ का माल ये मोडा मुफत में खावे, मैं ही मैं लगाया ना, मरुधर रो माल मुफत में खावे मोडा। ये देखो खाकर मुस्टुंडा, कहीं काम नहीं कोई धाम नहीं, खावे और पड़िया रहे एकदम। देखो तो उनके उद्विग्न हो गया। अब बताओ वो बाप बेचारा साधु है, भजन करने वाला है, मांग के खाता है, मस्ती में चल रहा है, उससे वो उद्विग्न हो गया, अब क्या करें वो? और भगवान कहते हैं कि जो किसी को भी उद्विग्न न करे। फिर सेठ जी ने ये समाधान अपने में माना कि भाई हमारी भावना नहीं है कि कोई उद्विग्न हो जाए, वो अपने लखनों से होता तो हम क्या करें। ऐसे जो कोई बोलता है ना कि भाई कोई हमारे साथ में जो है हम किसी को तकलीफ न दें पर हमारे साथ में कोई तकलीफ का व्यवहार न करे, तो भाई इस अंश में भूल है। वो तकलीफ का व्यवहार करे तो आप उस तकलीफ तक पहुंचो ही मत। वो करने वाला तो करेगा आपके भाग्य के अनुसार, परंतु आप उससे उद्विग्न मत होइए। आप ये सोचिए कि यहां मेरी परीक्षा हो रही है, इस दृष्टि से स्वीकार कीजिए। ये समझौता से चलना पड़ेगा, नहीं संसार में आपके लिए साधना का रास्ता है वो बढ़िया नहीं बनेगा। आप हम सभी इस बात का ठीक ढंग से विचार करें कि हमको परमात्मा की तरफ चलना है कि संसार के संसार का आराम देखना है। संसार का आराम का तो कोई अंत नहीं है, नए नए सुख के साधन बन रहे हैं, उनसे तो कभी अंत आने वाला नहीं है। और भगवान की तरफ चलेंगे तो अपने को सुख शांति मिलेगी। यदि बताओ भगवान की बात सुनने में अपने को इतना अच्छा लगता है और अपने घर का आराम छोड़ करके 9 दिन 10 दिन यहां रहते हैं। अब तो वही गीता भवन वालों ने बड़ी उदारता की है, अध्यात्म मंडल गीता भवन वालों ने, ढालेगांव वालों ने बड़ी उदारता की कि आप लोग यहां प्रेम से रहो और भजन करो। और ये उदारता भी ये नहीं कहा कि अभी तो आप चले जाओ, बाद में हमसे संपर्क कर लेना। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को कार्यक्रम खत्म हो रहा है, उसमें 25 तारीख से ही रह जाओ। बोले कोई ये समझते हो कि साहब अभी तो हम आए हैं, हम पूरा सामान भी नहीं लाए, क्या करें, तो थोड़े सामान का अभाव में भी आप रह करके देख लो थोड़ा, 8-10 दिन 15 दिन, उसके बाद चले जा करके फिर वापिस आ जाओ, फिर चले जाओ फिर आ जाओ। सत्संग करें, भजन करें, थोड़ा संसार से परिवार से अलग होने का स्वभाव तो बनेगा, उसी में से ही वैराग्य होगा, उसी में से ही होगा, वो उसी में से ही होगा। एक राजा थे, वो चले अपने नगर के अंदर चले वो राजा, तो घूमने के लिए निकले तो भाई वहां देखा कि बहुत से लोग हैं, वो बाजार के अंदर जो नाली है उस नाली के अंदर कुछ लोग अपने हाथ में वो तगड़ा लेकर के कुछ पानी में से यूं ढूंढते हैं, यूं मिट्टी और पानी में से, फिर पानी को नितारते हैं, फिर अंदर अंदर उस मिट्टी के अंदर कुछ ढूंढते हैं। राजा ने देखा कि ये लोग क्या करते हैं भाई, तो राजा ने उन लोगों को इकट्ठा किया कि अरे आप लोग, ये तो नाली है नाली, इसमें तो घरों का गंदा पानी जाता है, कोई थूकता है, कोई मूंदता है, कोई क्या करता है, वो गंदा पानी तुम्हारे इसमें, तुम ये क्या करते हो? तो कहा कि देखिए गंदी नाली तो है पर यहां पर कई जो है सुनारों के कारखाने भी हैं। वे सुनार लोग तिजाब से सोने को जब धोते हैं तो उसमें से सोने के कण कट करके और वो बहते हैं, तो हम लोग पानी के अंदर वो सोने के कण देखते हैं। अच्छा, तो इतने इतने कणों से तुम कितना सोना बना लोगे? ये साहब बहुत दिन बहुत प्रयास करेंगे तो एक बहुत बढ़िया अच्छी अंगूठी बन जाएगी, इतना हम सोना जीवन भर में कर लेंगे, एक सोने की अंगूठी बना लेंगे हम। तो कहा कि अच्छा एक अंगूठी के लिए कि हाँ मंत्री जी ये कितने आदमी, इनकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना करके और कहा कि राजघराने की तरफ से इन सबको एक एक अंगूठी दे दो, राज के खजाने से दे दो, राजा की आज्ञा हो गई, सबको दे दिया। राजा फिर 5-7-10 दिन बाद फिर गया उसी मोहल्ले में और वो लोग यही काम कर रहे थे वापिस। राजा ने कहा अरे हमने आपको एक एक अंगूठी दे दी फिर भी आप यही काम कर रहे हो, बात क्या है, क्या अब क्या है? तो कहा कि यही करने से मिला था ना, इसलिए यही कर रहे हैं, यदि हम ये नहीं करते थोड़ी मिलती, तो इसी में से ही मिलेगा, तो इसी में से ही मिला इसलिए इसी में से ही मिलेगा। तो भाई सत्संग से ही मिला और सत्संग से ही मिलेगा, कितनी अच्छी व्यवस्था, कितने अच्छा भाव है। व्यवस्था तो देखो प्रारब्ध के अनुसार है, व्यवस्था, हम तो कहते हैं व्यवस्था साधारण होनी चाहिए, साधारण व्यवस्था, वैराग्य पूर्ण जीवन। देखो गीता भवन ढाले गांव का जो निर्माण है वो कितना सीधा सादा हुआ है। ये भोगियों के मकान नहीं है, ये कोई जो है आराम और ऐश के मकान नहीं है, ये निर्वाह के मकान है। टैंड का ऊपर छप्पर डाल दिया, सस्ता सुंदर। अब कोई कहे यार इतना पैसा लगा इसको स्लेप डाल करके, अच्छा रंग करके, बहुत बढ़िया इसको बनाना, खूब देखे तो अच्छा लगे, तो भाई ये कलयुग का प्रवेश होगा उसमें। बिल्कुल साधारण ढंग से बनाए। और आप लोगों को देखा जाए, हम बोलते तो हैं लेकिन कई कई अच्छे अच्छे धनी आदमी घास फूस की कुटिया में है, वो एक कपड़ा डाल दिया कुटिया में है। वो पुरानी जगह जहां सत्संग होता था खूब वहां पर कुटिया लगी हुई। ये वास्तव में जो है सत्संग की जगह है और सत्संग का जीवन है। अब इसमें यदि आप लोग थोड़ा बहुत और ज्यादा समय लगाओ तो भाई अपने को ही लाभ है। इसमें क्या होगा कि बिना परिवार के भी आदमी का काम चलता है, बिना पैसे, बिना प्रवृत्ति के, बिना और के काम आराम से चल सकता है, ऐसी भावना होगी, वह इसी का नाम तो वैराग्य है। ये बहुत जरूरी है ऐसा होना। राजा महाराजा बड़े बड़े जो है प्रतिष्ठित लोग थे उस जमाने में, अपना घर बार छोड़ के चले जाते, बाल बच्चों को शासन संभला देते और वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करते थे, उत्तराखंड में चले जाते, वापिस आने का नाम ही नहीं लेते। पर आपके लिए तो ये समय के अनुसार अपने अपनी बात होती है, तो भाई ऐसी बात तो अपने यहां है नहीं कि आप जा ही ना सको। आप जाया हो, आप वापिस आ जाओ, पर जाओ तो वापिस आने के लिए ही जाओ कि आप जा तो रहे लेकिन वापिस आना है हमको, भजन करना है, कोई दूसरा काम नहीं। तो भाई ऐसी बातें जो पैदा होती हैं इस कलयुग में जिन पुरुषों के मन में, ये कितनी निस्वार्थ और कितनी भगवत भाव की ऊंची से ऊंची बात है। कह दिया 25 तारीख से रह जाओ, यहां प्रार्थना वगैरह सब होगी, कितनी बढ़िया बात है। देखो आयोजन का महत्व है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। आयोजन हो, ऐसा काम हो, ये देखने में, ऐसी बातें देखने में नहीं मिलती कहीं, इतनी बढ़िया बात है। एक कितने ऊंचे महापुरुष का यहां संकल्प जुड़ा। ढाले गांव में महाराज श्री का बड़ा उत्साह रहता था, बड़ा अच्छा उत्साह रहता था। शरीर काम नहीं करे तो भी मना करने से रुक जाते थे, वो मना कर दिया इसलिए भाई किसी का निरादर ना हो, और उनके मन से पूछा जाए वो ऐसे ऐसे जगह पर आने के लिए तो तत्पर होते थे, भाई ऐसी जगह तो जाना चाहिए, यहीं रोकते हो। वो भावना आप लोगों में आ रही है महापुरुषों की कृपा से, और जो लोग यहां रहने का भाव रखते हैं वस्तुतः उनके ऊपर संतों की एक विशेष कृपा ही माननी चाहिए, कितना अच्छा भाव है। तो सत्संग के द्वारा ये भाई इसी में से ही मिलेगा अपने को। तो वो संत महात्मा क्या करते हैं, दूसरों को संत बनाते हैं। तो आप लोग यहां वैराग्य पूर्वक भजन करेंगे तो चाहे कपड़े आपके धोती पजामा जो है जैसे गृहस्थ रूप दिखता है, वास्तव में आप संत होंगे, क्योंकि संत तो आदमी भाव से होता है, कपड़े से थोड़ी होता है, कपड़े से नहीं होता, वो भाव से होता है। तो आप जिस संतत्व की तरफ चल रहे हो इस संतत्व को और ज्यादा विस्तार की तरफ ले चलो, यही आपसे प्रार्थना है। और यदि मान लो अभी न आ सको तो वापिस जाकर के भी जल्दी आने की आप लोग चेष्टा करने ऐसी। भाई आप ऐसा समझिए कि ये निमंत्रण है संत महापुरुषों का, जिनका ये गीता भवन में इतना लगाव रहा, ऐसे परम महापुरुष जो वे उनका एक तरह से अव्यक्त निमंत्रण है, उनके निमंत्रण को स्वीकार करके भी आपको आने का प्रयास करना चाहिए।
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सियावर रामचंद्र की
जय
सियावर रामचंद्र
की जय
मोर मुकुट वंशी वाले की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय